नमस्कार भारत, 23 मई दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में धमाका, 19 की मौत की पुष्टि, 50 से ज्यादा घायल। घटना के अपडेट के लिए चलेंगे लंदन। और तीन तलाक मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, महिला संगठनों ने उठाए सवाल।
बोर्ड है जो कि एक प्राइवेट इदारा है, इनको ये जताने की कोई जरूरत नहीं है कि जैसे कि भारत के सभी मुसलमानों के ये रहनुमा है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में पुलिस का कहना है कि एक पॉप कंसर्ट के बाद हुए धमाके में 19 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन धमाकों को चरमपंथी हमला माना जा रहा है। अमरीकी गायिका एरियाना ग्रैंडे के कंसर्ट के बाद मैनचेस्टर एरेना के बाहरी क्षेत्र में एक बड़ा धमाका हुआ है। एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया है कि धमाके की वजह से वो कई मीटर दूर जा गिरे। धमाके से पूरी इमारत हिल गई। चश्मदीद का कहना है कि उन्होंने कई लोगों को जमीन पर पड़े देखा, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी थी। बम निरोधक दस्ते और हथियारबंद पुलिस बल इस समय मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल की नाकेबंदी कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अमरीकी गायिका एरियाना ग्रैंड की प्रस्तुति खत्म होने के बाद यह धमाका हुआ था। एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि धमाके के बाद हंगामे और हड़बड़ाहट का माहौल था और लोग चिल्ला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी जेसिका ने बीबीसी को बताया, मैं सहम गई थी। बड़ा जोरदार धमाका हुआ और फिर सब हमारी ओर दौड़ने लगे और चिल्लाने और रोने लगे। सभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और हम पर चढ़ते जा रहे थे। मैं बुरी तरह सहम गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सभी भाग रहे थे और हमारे ऊपर चढ़े जा रहे थे। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। अमरीकी सीनेटरों का कहना है कि वो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के पिछले साल हुए चुनावों में रूसी दखल के बारे में सीनेट के समक्ष सबूत न पेश करने का फैसला करने से निराश हैं। सीनेट की इंटेलिजेंस समिति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर रिचर्ड बर और मार्क वार्नर का कहना है कि वो फ्लिन को गवाही के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। फ्लिन के अधिवक्ताओं का कहना है कि वो संविधान के 5वें संशोधन का सहारा लेंगे, जिसके तहत उनके पास गवाही से खुद को बचाने का संवैधानिक अधिकार है। फ्लिन ने रूसी राजदूत से अपने संबंधों के बारे में उपराष्ट्रपति को गलत जानकारी देने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसराइल के दौरे पर आए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने के फिर से प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इसे सबसे मुश्किल समझौतों में से एक कहा है। ट्रंप ने अपने मेज़बान इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता की तारीफ भी की। ट्रंप ने कहा कि उन्हें आभास हो रहा है कि इस विवाद पर कभी ना कभी समझौता हो ही जाएगा। मंगलवार को ट्रंप बेथलहम में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने यरूशलम में एक साझा प्रेस वार्ता में कहा,
अमेरिका वेलकम्स द एक्शन एंड सपोर्ट
अमरीका हर उस राष्ट्र का स्वागत करता है जो हिंसक विचारधाराओं को खत्म करने के मुश्किल लेकिन अहम काम के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ भी और दुनिया भर में कई जगह बिना वजह खून खराबा हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जाँच को जारी रखे। टेमेर के वकीलों ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वो बेगुनाह साबित होंगे। इससे पहले टेमेर ने अपने खिलाफ पेश सबूतों को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जांच रोकने के लिए कहा था। टेमेर खुद पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को नकारते रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। कुछ वक्त पहले जहां संगीत के सुर गूंज रहे थे वहां कुछ मिनटों के बाद एक धमाका हुआ और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जैसा कि आपने खबरों में सुना ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके को संभावित चरमपंथी हमला मानकर जांच शुरू हो गई है। मैनचेस्टर एरिना में अमरीकी पॉप गायक एरियाना ग्रैंडे का एक कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ उसके ठीक बाद धमाका हुआ। धमाका किस कदर जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि वो धमाके के असर से कई मीटर पीछे चले गए। धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ता पूरे क्षेत्र की जांच परख में लग गया। कंसर्ट में मौजूद रहे जोश नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को जानकारी दी। सबने बाहर जाना शुरू किया तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मुझे जितना याद है ये बहुत जोरदार धमाका था। हर कोई दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। एंडी नाम के एक अन्य शख्स ने जो वहां मौजूद थे उन्होंने बीबीसी को जानकारी दी। मैं कंसर्ट में नहीं गया था, मेरी पत्नी और बेटी गए हुए थे, इसलिए मैं बाहर उनका इंतजार कर रहा था। तभी जोरदार धमाका हुआ और मैं करीब 30 फुट दूर चला गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि करीब 30 लोग यहां वहां पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कई की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ बेहोश रहे हों लेकिन कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी जो घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा स्टूडियो में मौजूद हैं। और दिलनवाज आप श्रोताओं को बताएं कि पूरा घटनाक्रम दरअसल था क्या?
जी, मैनचेस्टर पुलिस ने बताया है कि स्थानीय समय अनुसार 10:35 पर मैनचेस्टर एरिना के बाहर धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। जिन लोगों ने बीबीसी से बात की है उन्होंने हंगामे हड़बड़ाहट के माहौल का वर्णन किया है और लोगों ने बताया है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर दौड़ रहे थे और वहाँ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने एक संदिग्ध डिवाइस मिलने की बात भी कही जिसे बाद में जो है वहाँ टूटा गया कपड़ा बताया गया। ये एरियाना ग्रैंड अमरीकी पॉप सिंगर हैं, उनका कंसर्ट था और ये इसके बाद जो धमाका हुआ है मैनचेस्टर के पास में जो विक्टोरिया स्टेशन है वहाँ से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। हाई अलर्ट पर वहाँ पर पुलिस है, हथियारबंद पुलिस और जो बम निरोधक दस्ते हैं मौके पर तैनात हैं। इसके अलावा जो असमंजस का माहौल है वो काफ़ी देर तक रहा। अभी भी जो पूरी तरीके से स्थिति है स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैं बीबीसी के अलावा कुछ और मीडिया रिपोर्टें देख रहा था जिनमें कहा गया था कि ये एक आत्मघाती हमला भी हो सकता है।
जी, क्या ताज़ा स्थिति है जानने के लिए हम चलते हैं सीधे लंदन। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीबीसी संवाददाता वंदा। वंदा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे सीधे जानना चाहूँगा फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है?
जी, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो सबसे ताज़ा जानकारी हमें कुछ ही देर बाद वहाँ से मिलेगी। कि अगर अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि किस तरह की किसी ने जिम्मेदारी ली है, पुलिस इसको अभी संभावित आतंकवादी हमला मान रही है और हथियारबंद पुलिस, जैसा दिलनवाज ने भी बताया, यहाँ पे मौजूद है। हेलीकॉप्टर भी देखे जा रहे हैं। और उसके अलावा जो एक सबसे, क्योंकि इस कॉन्सर्ट में ये एक पॉप कॉन्सर्ट थी तो इसमें जो ज्यादातर देखने वाले, इसको सुनने वाले आए थे वो या तो बच्चे थे या फिर जो टीनेजर्स युवा थे। तो और बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जिनके साथ कोई माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था और उसको लेके बहुत ही असमंजस की स्थिति है क्योंकि वो बच्चे बहुत सारे लापता हैं। तो माता पिता उनकी तलाश कर रहे हैं या फिर बच्चे अकेले कहीं सड़कों पे मिल रहे हैं तो लोग उनको आश्रय दे रहे हैं। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ है अभी यहाँ पर।
जी, हमने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की बात भी सुनी, अभी हमने उनकी क्लिप भी अपने श्रोताओं को सुनाई। उनमें से कुछ का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों को रिसीव करने गए थे और धमाके के असर से वो खुद दूर चले गए और उनमें से कई अपने घर वालों को भी खोज रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें कि ये कैसा एरिना है जहाँ पर ये कार्यक्रम था, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, किस तरह की स्थिति है वहाँ?
जी, ये जो अरीना है इसकी जो क्षमता है वो 21,000, ये इंडोर वेन्यू है। तो कहा जाता है कि शायद यहाँ इंग्लैंड में ये शायद सबसे बड़ा इंडोर
वेन्यू माना जाता है, और जो पूरा यूरोपीय संघ है उसमें शायद दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा, तो उस हिसाब से यहाँ, और ये बहुत ही एक लोकप्रिय वेन्यू है जहाँ पे अक्सर जो संगीत से जुड़े और खेल से जुड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स, बियॉन्से, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, वो यहाँ पे अपनी कभी ना कभी प्रस्तुति दे चुके हैं। इस साल लेडी गागा यहाँ आने वाली हैं, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2002 के आसपास, तब भी इसे इस्तेमाल किया गया था, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी लोकप्रिय एक जगह है जहाँ पे तमाम कुछ ना कुछ कॉन्सर्ट होते रहते हैं। और उसके एकदम साथ ही बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जो फिलहाल बंद है, उसकी वजह से भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग शहर से जो निकलना चाहते हैं वो नहीं निकल पा रहे, खासकर जो बच्चे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत से लोगों ने अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, खासकर बच्चों की तस्वीरें डाल रखी है कि इन्हें अगर आपने कहीं देखा हो तो जरूर बताएं, क्योंकि खासकर बच्चों को लेके बहुत दिक्कत है
जी। और गायिका एरियाना ग्रैंडे के प्रवक्ता ने कहा है कि वो सुरक्षित है, लेकिन बाकी लोगों की क्या स्थिति है, लगातार पुलिस उस पर नजर बनाई हुई है। इस बारे में पुलिस की तरफ से अभी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही रही है जैसे आपने बताया, क्या कोई आधिकारिक अनाधिकारिक और जानकारी सामने आई है, जिस तरह की एक बात हुई थी कि धमाका एक नहीं एक और धमाका सुना गया था, इस बारे में कुछ स्पष्ट हो पाई है चीजें?
जब कुछ प्रत्यक्षदर्शी निकल रहे थे तो कई, कुछ एक ने कहा कि शायद दूसरा भी सुना, लेकिन वहाँ अफरा तफरी का इतना माहौल था कि उस समय ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अंदर कई लोग व्हीलचेयर पे थे, और जो जो लोगों ने कुछ वीडियो डाले उसमें आप देख सकते हैं कि लोग एक के ऊपर चढ़कर एक तरह से कोई मतलब रौंदते हुए भी निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत अफरा तफरी थी। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि एक कोई संदिग्ध वस्तु मिली थी, तो पुलिस ने जाहिर है एहतियातन उसमें एक नियंत्रित एक विस्फोट किया, लेकिन बाद में कहा गया कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक कोई सामान्य वस्तु थी, लेकिन एहतियातन वो विस्फोट किया गया। और इसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगी कुछ देर में, और तब ज्यादा जानकारी मिलेगी। अभी इतना है कि जो आतंकवादी निरोधी दस्ता है उसके अफसरान यहाँ लंदन में मिलेंगे, और फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी
जी। पुलिस सक्रिय है वंदा, जो आपको ताजा अपडेट मिलेगा हम कार्यक्रम में दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलनवाज पाशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कमेंट्स इसे लेकर आ रहे हैं दुनिया भर में, केवल ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस से भी मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, यूएस से भी जानकारी दी जा रही है, क्या कुछ है अब
जी?
वास्तव में
जब भी ऐसा हमला होता है तो दुनिया भर में लोग जो उससे प्रभावित लोग होते हैं उनके साथ खुद को खड़ा हुआ दिखाते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ होने का एहसास कराया जा सके। इसके अलावा मैं जो अपनी सोशल मीडिया फीड देख रहा था उसमें ऐसे लोगों की तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं जो गायब हैं या जो इसके बाद नहीं मिल रहे हैं या अपनों से बिछड़ रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे से मिलाने की अपील भी की जा रही है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हज़ारों लोग थे और कई लोग बहुत दूर से आए थे, अमरीका की बहुत चर्चित पॉप गायिका हैं इन्हें सुनने के लिए, तो ऐसे में बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यदि आप भटक गए हैं, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप हमारे घर आके रह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो ट्वीट किया जा रहा है रूम फॉर मैनचेस्टर हैशटैग से किए जा रहे हैं, जिसमें ये प्रस्ताव लोगों को दिया जा रहा है। और मैं पढ़ रहा हूँ एक अभी, एक सोफी ने लिखा है कि यदि किसी को रुकने की ज़रूरत है तो मेरा घर इस घटनास्थल से सिर्फ 10 मिनट दूर है, आप आ सकते हैं, मेरे यहाँ पे खाली कमरा है जी। सबसे ज़्यादा लोग जो है मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक दूसरे से जुड़ने की और खोजने की अपील की जा रही है, अभी एक Zens38 हैं, उन्होंने इस नाम से ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने अपने दोस्त की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त इस हादसे के बाद से मिल नहीं रहे हैं और मैं उन्हें लेके बहुत परेशान हूं, यदि किसी ने देखा हो तो बताए। तो लोग एक किसी भी तरीके से या तो मदद मांग रहे हैं या मदद की पेशकश कर रहे हैं। और आम तौर पर यह देखा जाता है जब भी इस तरीके के हमले होते हैं तो जो इंसानी जज्बा है लोगों का वो निकल कर बाहर आता है, और ठीक वैसा ही अभी मैं सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूं।
तो दिलनवाज, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में धमाका हुआ है, 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, करीब 50 लोग घायल हैं। इस बारे में लगातार अगर खबर का अपडेट आप लेना चाहें तो bbchindi.com पर आ सकते हैं, जहां पल पल इस खबर की ताजा अपडेट दी जा रही है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख भारत का करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड निकाहनामे में यह शर्त लगवाएगा कि तीन तलाक ना दिया जाए। तीन तलाक का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बोर्ड अपना अस्तित्व खतरे में देखकर हरकत में आया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए निखिल रंजन से इस रिपोर्ट में।
तीन तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद और फैसला सुनाए जाने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि निकाहनामे में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि तीन तलाक न दिया जाए और सभी काजियों को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। अदालत में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे संगठनों में शामिल भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की जकिया सोमन ने सीधे बोर्ड पर सवाल उठाया और कहा कि उसे इस मामले में हलफनामा देने का कोई हक नहीं है।
यहाँ किसी से हम कोई चैरिटी नहीं मांग रहे हैं, किसी से हम कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम कोर्ट से अपना अधिकार मांग रहे हैं और हम पार्लियामेंट से अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो बोर्ड है जो कि एक प्राइवेट इदारा है, इनको ये जताने की कोई जरूरत नहीं है कि जैसे कि भारत के सभी मुसलमानों के ये रहनुमा हैं और जैसे कि सारे ही काजी इनके ताबे में काम करते हैं, ये सब बातें एक्चुअली हकीकत से परे है। दूसरी बात, ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के पास अपने निकाहनामा की कॉपी तक नहीं होती है और जो कुछ महिलाओं के पास निकाहनामा की कॉपी है उसमें सिर्फ नाम और सिग्नेचर और निकाह की तारीख इतना ही लिखा होता है, उससे ज्यादा उसमें कोई क्लॉजेस वगैरह होते नहीं है।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का ये भी कहना है कि अपना अस्तित्व खतरे में देख पर्सनल लॉ बोर्ड ये हलफनामा लेकर आया है। जकिया सोमन का कहना है कि भारत में मुसलमानों के लिए भी दूसरे धर्मों की तरह ही शादी ब्याह के कानून बनाए जाने चाहिए।
हमारे देश में जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, उसी तर्ज पे मुसलमानों का भी एक मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए। जो देश की पार्लियामेंट पास करे वो देश की पार्लियामेंट का दायित्व है।
उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हलफनामे में कोई नई बात नहीं कही गई है, इसका प्रावधान पहले से ही मौजूद था। बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड खुद ही इस मामले में कदम बढ़ा रहा है और अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
ऐसे तमाम लोगों को जो बिला वजह तीन तलाक देते हैं उनका सोशल बायकॉट किया जाए, और उसमें हमने बाकायदा लोगों को एक डायरेक्शन दी थी जो कि 15-16 अप्रैल को लखनऊ के अंदर हुई थी। तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बतलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है हमको दाखिल कीजिए कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी चीज दाखिल होती है आपको पता होगा कि वो हलफनामे के जरिए ही फाइल होती है। तो हमने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उर्दू का जो रेजोल्यूशन है उसके साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके एफिडेविट फॉर्म के अंदर उसको भेजा।
कमाल फारूकी ने इस बात से भी इनकार किया कि बोर्ड मुसलमानों में किनारे हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि बोर्ड की एक आवाज पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दस्तखत कर शरिया के प्रति आस्था जताई और इसमें दखलअंदाजी का विरोध किया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आवाज के ऊपर जो है 4,85,00,000 लोगों ने दस्तखत करके कि हम शरीयत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहते और जो शरीयत में तलाक के जो मसाइल हैं उनको एग्री करते हैं, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, लॉ कमीशन को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये बाकायदा दस्तखत कराकर भेजे हैं जिसमें आधे से ज्यादा औरतें हैं। तो कौन किनारे आ गया हमको नहीं पता।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील सैफ महमूद भी मानते हैं कि हलफनामा भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया गया हो लेकिन बोर्ड ने ये कदम इस मुद्दे पर मचे बवाल को देखकर ही उठाया है। सैफ महमूद ने बीबीसी से कहा,
अगर इस कदर हंगामा ना होता और मामला जो है फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में छुट्टियों में ना सुना जा रहा होता तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस किस्म का हलफनामा जो है वो फाइल करता। इससे साफ ये लगता है कि उनकी सिचुएशन की जो पोजीशन है वो काफी कमजोर है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद भी ये मान चुका है कि तीन तलाक की प्रथा उचित नहीं कही जा सकती और इस पर अमल करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की सलाह देता है। सैफ महमूद सवाल उठाते हैं कि अगर इस पर अदालत कानून के जरिए रोक लगाती है तो बोर्ड इसका समर्थन क्यों नहीं करता।
कैफी आजमी साहब का एक शेर है, बस अब गरीबी जाने ही वाली है मुल्क से, ये सुनते सुनते उम्र के 70 बरस गए। तो ये तो 70 बरस से 100 बरस से यही सुन रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड से हम कुछ करेंगे इस बारे में। अगर आप वाकई सीरियस होते इस बारे में कुछ करने के लिए तो अब तक आप कर चुके होते। दूसरी बात ये मुझे जो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि अगर आप खुद अपने हलफनामे में लिख रहे हैं और आपका रेजोल्यूशन में ये है कि साहब तीन तलाकें जो हैं, ट्रिपल तलाक या तलाक बिदत जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है, और तो फिर उसको अगर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक करार दे दे तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है।
मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब का लक्ष्य तो एक ही है कि महिलाओं के साथ ज्यादती ना हो। सुधार के तरीकों पर सहमति शायद इस तकलीफ से महिलाओं को निजात दिला सके। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और दिलनवाज पाशा मौजूद हैं दिल्ली से छपे अखबारों के साथ। दिलनवाज, ये खबर तीन तलाक वाली, ये सारे अखबारों में?
जी, हर अखबार के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान लिखता है, तीन तलाक कहने से रोके काजी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। इसके अलावा तीन तलाक पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पैतरा बदल लिया है, ये पंजाब केसरी बता रहा है। इसके अलावा एक और खबर है, आपको याद होगा भारत प्रशासित कश्मीर में एक स्थानीय कश्मीरी नागरिक की सेना की जीप से बंधे हुए तस्वीर आई थी और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इस घटना के से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनको सेना ने सम्मानित किया है। हालांकि
ये मीडिया में खबरें थी, सोशल मीडिया पर भी
कल ये खबरें थी और आज अखबारों में छपा है। हालांकि इस घटना की वजह से नहीं, उन्होंने जो वहां पर ऑपरेशंस किए हैं उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
उस घटना की तो बीच शायद जांच भी चल रही है।
जी जी बिल्कुल,
पुलिस और सेना दोनों के स्तर।
लेकिन समूचे भारतीय मीडिया ने इस घटना और उनके अवार्ड को जोड़कर दिखाया, जिसके बाद ये संकेत जाता है। पहली नज़र में पढ़कर मुझे भी ऐसा ही लगा कि कहीं ऐसा करने के लिए तो उन्हें ये अवार्ड नहीं मिला है। इसके अलावा एक आपराधिक खबर है, सभी अखबारों में है, दिल्ली से जुड़ी घटना है जिसमें एक कारोबारी ने अपने जो पार्टनर हैं उनके समूचे परिवार का कत्ल करा दिया। पहले पत्नी बेटियों का कत्ल कराया, फिर बेटों का, और बाद में जेल से बुलाकर कारोबार अपने सहयोगी को। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है और आमतौर पर रोजाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले पन्ने पर होते हैं, आज फिर हैं। इस बार उन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने
एक और
मानहानि का मुकदमा कर दिया है। दरअसल उनके वकील राम जेठमलानी ने उन्हें जेटली को अदालत में धूर्त कहा था और अब एक बार फिर से जो है इस पर मुकदमा हो गया है। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर है जो ध्यान खींच रही है, दिल्ली से मुंबई तक नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, यानी आप दिल्ली से बैठिए मुंबई उतरिए।
तेजस चलने की भी खबर थी कल।
जी, उसी से उत्साहित विभाग ने जो है इस और राजधानी एक्सप्रेस को गति देने के लिए ये फैसला किया है, ऐसी खबर अखबार में है। पूर्व कोयला सचिव को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, ये खबर भी सभी अखबारों में पहले पन्ने पर।
दिलनवाज, मैं बता दूं अपने उन श्रोताओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की खासतौर पर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं कि IIT में 500 सीटें और बढ़ेंगी, इस खबर को भी अखबारों में जगह मिली है। बहुत शुक्रिया दिलनवाज समीक्षा के लिए।
आज का दिन कैसा लग रहा? अच्छे दिन, वाह।
मोदी सरकार के 3 साल, कौन कितना खुशहाल, कौन कितना बेहाल।
युवक के भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी इनका खरा नहीं उतरा है, किसी भी सेक्टर में, चाहे एकेडमिक सेक्टर हो, चाहे आपका IT सेक्टर हो।
अच्छे दिन लाने के इरादे और विकास के वादे।
एक चीज है, उन्होंने PMO में एक डिसाइसिवनेस लाया है। पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहाँ में कोई आदमी नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी।
कुछ लोगों को जो देशवासी बाहर हैं उनको इकट्ठा करके जय जयकार के नारे लगा लेने से कोई रिलेशन बनता नहीं है। आपने अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश की, आपका रशिया से संबंध खराब हो गया।
आंकड़ों और तथ्यों की रोशनी में कैसे दिखते हैं दावे?
ये नहीं कह सकते कि जो GDP ग्रोथ तो घटी है इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, पुरानी परिस्थिति थी वो भी आगे आई है।
पड़ताल करती विशेष रिपोर्टें, विश्लेषण और पूरी जानकारी BBC हिंदी रेडियो और bbchindi.com पर।
और अब रुख राजस्थान का। राजस्थान में सदियों पुरानी गालीबाजी की परंपरा दम तोड़ रही है। जयपुर में कुछ जाति समाज के संगठनों ने इस परंपरा को जिंदा रखने का अभियान शुरू किया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं जयपुर से नारायण बारेठ।
कहीं स्वर ऊंचे हैं तो कहीं शब्द तीखे हैं। सियासत की सभा महफिलों में भाषा का मिजाज बदल गया है। ऐसे माहौल में भी गालीबाजी की परंपरा दम तोड़ रही है। कायद समाज के सुधीर श्रीवास्तव कहते हैं, गालीबाजी की यह परंपरा तो अमीर खुसरो के दौर में शुरू हुई थी। वे कहते हैं, ये वो नहीं है जो राजनीति के सभा मंचों पर आज दिखने लगी है।
ये देखिए, ये अलग प्रथा है और वो जो गालीबाजी मंचों से होती है वो अलग टाइप की गालीबाजी है। ये शुद्ध व्यंग हुआ करता था। ये करीब 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। अमीर खुसरो ने अपने मजहब के अंदर कव्वाली की शुरुआत की और हमारे जयपुर में ये चीज़ एक तरह से ढूंढाड़ी भाषा में आरम्भ हो गई। खाली भाषाओं का फर्क है, गालीबाजी मुख्य रूप से एक तरह से श्रृंगार के गीत इसमें गाए जाते हैं। बिल्कुल मरणासन्न है, क्योंकि पहले अखाड़े हुआ करते थे, अब अखाड़े नहीं है, गाने वाले लोग नहीं है, आयोजक नहीं है और सबसे बड़ी चीज आश्रय नहीं मिल रहा।
कायस्त समाज ने दम तोड़ते इस परंपरा की शमय जलाए रखने का काम हाथ में लिया है। इसके लिए समय समय पर गाली गायन के आयोजन किए जा रहे हैं। कायस्थ समाज के अध्यक्ष कुमार संभव इस अभियान का सबब बयान करते हैं।
एक तरह से अर्धशास्त्रीय कला है। प्राचीन चीजें जो विलुप्त चीजें हैं राजपूताना की, उनको पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया हुआ है। निश्चित रूप से उसको विलुप्त होना सभी के लिए चिंताजनक। हिंदुस्तान की जो पहचान है वो इसकी सांस्कृतिक परंपराओं से, खासकर राजपूताना की पहचान जो इसकी रंग बिरंगी संस्कृति है, ये धीरे धीरे अगर विलुप्ति की तरफ, तो निश्चित रूप से आज हमको नहीं लग रहा, लेकिन दो पीढ़ी तीन पीढ़ी बाद केवल किताबों में अगर ये ज्ञान रह जाता है तो हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी उसको एक कसक रह जाएगी, काश हमारे बुजुर्ग हम लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं।
गालीबाजी परंपरा के जानकार कहते हैं, इसमें व्यंग है, उलाहना है तो अपनत्व का मिठास भी।
सभ्य गालीबाजी होती है, मीठी चुटकी जिसमें लेते हैं ना, जिसमें सामने वाला शर्मा भी जाए और तुरंत जवाब देने को उठ खड़ा हो। गाली नहीं निकालूंगा तो आप इंसल्टेड फील करोगे, और ये बड़ी अश्लील गाली है। एकदम से चुटकी लेते हुए, मीठी चुटकी लेते हुए, शर्मिंदगी देते हुए, हल्की सी शर्मिंग देते हुए गाली प्रथा है और बड़े आनंद आते हैं। अगर कोई ढूंढाड़ी भाषा का विद्वान हो या मारवाड़ी भाषा का, उसको बड़े आनंद आएंगे। लेकिन अगर जो कोई दो भाषा नहीं समझता तो वो एक्शन से ही मजे लेता है। हर गालीबाजी के अंदर एक संदेश होगा, सामाजिक संदेश।
उम्रदराज गोपाल माथुर की निगाहों ने वक्त को करवट लेते देखा है। वे पुराने दिनों को याद कर कहते हैं,
हाँ दुख तो है इस बात का कि अभी नए बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, वो आ नहीं पाते हैं हमारे साथ में। ये बरसों से चल रही, हम छोटे बच्चे थे जब से गालीबाजी प्रथा चल रही है, इसी को कंटिन्यू करने के हिसाब से हमने ये गायन का प्रोग्राम रखा है ताकि नई पीढ़ी हमारे साथ चले, गालीबाजी गाए, ये गायन चलती रहे। जितने भी हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने गालीबाजी लिखी है, उन्होंने किसी भी गाली में अश्लील शब्द कोई काम में नहीं लिया है और इन गालियों को हम बच्चों में, लेडीज में, सब में भी गाते आ रहे हैं। महिलाओं का भी कम हो गया। पुराने दौर में जगह जगह मोहल्ले में चोरे पे चौके लगती थी, हर एक अखाड़े का आदमी आते थे, राजा महाराजा टाइम से ही चली है।
गालीबाजी के कदरदान इस परंपरा के यूं दम तोड़ने से मायूस हैं, पर वो नहीं जानते कि सियासत के सभा मंचों पर बोली जाने वाली तीखी भाषा के शोर में इस शास्त्रीय गालीबाजी को कौन सुनेगा। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
और हम बता दें कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में स्थानीय समय के मुताबिक 10:35 बजे धमाका हुआ है जिसमें 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 50 के करीब घायल हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीबीसी संवाददाता वंदा। वंदा, क्या अपडेट है, हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है, किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन हो सकता है कार्यक्रम के समय तक न हो पाए। मृतकों की संख्या भी 19 ही है, लेकिन यहाँ पे जरूरी बात है कि बहुत से लोग, खासकर बच्चे, अभी भी लापता हैं, तो वो उनकी गिनती किस तरफ होगी ये कहना अभी मुश्किल है। तो जो घायल हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि छर्रे जैसे वस्तुएं उनके शरीर से मिली हैं, जिससे शायद एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह का वो हमला हुआ होगा। इस बीच जो ब्रितानी प्रधानमंत्री हैं टेरेसा मे, उनका बयान आया है कि उन्होंने एक तरह सांत्वना जताई है और इसे अभी भी संभावित आतंकवादी हमला ही माना जा रहा है। यहाँ करीब करीब 2:30 बजे हैं और बाहर का जो दृश्य है, अब वहाँ करीब करीब खाली सड़क है और उस इलाके में किसी को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको कोई मालूम नहीं है कि वो किसके साथ आए थे, तो उन्हें एक जगह कुछ होटल में किन्हीं लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये स्थिति है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जो कुछ ही देर में संभावना है कि पुलिस बताएगी जो भी आधिकारिक जानकारी उनके पास है।
जीवंदा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस पूरी खबर की जानकारी आप लगातार ले सकते हैं। अपडेट के लिए bbchindi.com के पन्ने पर आ सकते हैं, जहां लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।